आज जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस और हम बात करेंगे पर्यावरण और स्वास्थ्य। हमारे साथ मौजूद है मिस नीलम गुप्ता जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NIUS एकेडमिक डिपार्टमेंट से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू।
तो मैम जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य, तो मैम मैं चाहूंगी चर्चा को शुरू कीजिए।
जी, टॉपिक है वो आपका मॉड्यूल 4 है, समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे, जिसके अंदर ये लेसन नंबर 11 है, पर्यावरण और स्वास्थ्य। आज हम जो बात करेंगे तो हम बात करेंगे खनन की, कृषि उद्योग की और शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए वायु प्रदूषकों के बारे में। साथ ही बात करेंगे कैंसर जन्य पर्यावरणीय जो पदार्थ हैं उनसे कैसे होता है और उनसे नियंत्रण की क्या विधियां हो सकती हैं। हैवी टॉक्सिक मेटल्स और ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि उद्योग, खनन और शहरी क्षेत्रों से जुड़े वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण उनसे कैसे होता है। क्योंकि हमें मालूम है कि सारी दुनिया में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो हेल्थ हैज़र्ड है, पर्यावरण जो प्रदूषण है वो स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है और खास तौर से विकासशील देशों में ये ज्यादा है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें तो काफी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो वाटर एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, दोनों ही खराब है। वायु प्रदूषण है, वायु क्या है, हम जिसमें सांस ले रहे हैं, हम सांस किसमें ले रहे हैं, दूषित वायु में ले रहे हैं। तो उसमें दूषित हवा में ऐसे पदार्थ मिले होते हैं, ऐसे तत्व मिले होते हैं जो कि फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं और इन एयर पॉल्यूटेंट के कारण ही आंखों में जलन होती है, सूजन आ जाती है, नाक बंद जाता है, कई बार छींकें आती हैं और सिर दर्द की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत गंभीर समस्याएं हो जाती हैं जिससे कि कई बार हमारी जान को भी खतरा हो जाता है, प्राण घातक भी हो जाते हैं, क्योंकि दूषित वायु के संपर्क में आने में बहुत देर अगर रहेंगे तो हम वो ब्रोंकाइटिस हो गया, खांसी हो गई, अस्थमा होगा या एम्फिसेमा रोग भी हो सकते हैं। अब कृषि के कार्य से कैसे वायु प्रदूषण होता है उस पर बात करते हैं, क्योंकि हम जब खेती में क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को छिड़कते हैं तो क्या होता है, उसकी कुछ मात्रा होती है जो वो भाप बन के उड़ जाती है, वो तो स्प्रे ही तो है, पानी मतलब लिक्विड ही फॉर्म तो है। तो वो करते हैं जो खेती को, तो जो फसल को तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में वो वायुमंडल में मिल जाती है तो वायुमंडल के जो पर्यावरण है उसको भी संदूषित कर देती है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ना फसल काट के जो उसका अवशिष्ट होता है उसको भी हम पूरे तरह से साफ नहीं करते, बल्कि उसमें खेत में आग लगा देते हैं। आग लगाने से धुआं उठता है, धुआं उठता है तो बहुत विषाक्त गैसें निकलती हैं, तो वो भी एक तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तो कई बार देखते हैं पराली जलती है तो काफी समय तक हमारा आसपास का जो एरिया है उसमें वो धुएं के बादल रहते हैं और घुटन जैसी महसूस होती है, सफोकेशन लगता है। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो पहले से भी मॉइस्चर होता है खेत में, इससे और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी तरह से जब हम खेती के में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जैसे डीजल पंप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये भी क्या होते हैं, क्योंकि ये भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, डीजल पंप चला रहे हैं, तो वो किसी न किसी फॉसिल फ्यूल से चला रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो ये वातावरण जो है संदूषित हो जाता है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इंडस्ट्री किस तरह से करती है, इंडस्ट्री अगर है लगाई तो धुआं निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदूषक तो वो धुआं ही है। और क्या होता है कि ये धुआं कहाँ से पैदा होता है, जो कोयला जैसे ईंधन को जलाते हैं और जो चिमनी है जिनसे वो प्रदूषक का जो काला धुआं है वो बादल वो निकलता है। अगर लंबी अधिक ऊंचाई पर चिमनी है तब तो वो सीधा ऊंचाएगा, लेकिन क्या होता है अगर उसकी हाइट कम है तो वो क्या होता है, वो धुआं जो है आसपास के क्षेत्रों को ढक देता है, तो काली का राख धूल जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। और क्योंकि जब फैक्ट्री में चलते तो गैस, जब जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं या खेत में कचरा जला जाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग से हमारे एक जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अब सल्फर के ऑक्साइड और जीवाश्म ईंधन को जलाने से सल्फर के ऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं, जैसे तेल रिफाइनरियों से निकलने वाला जो प्रदूषक है उसमें सल्फर के जो रिफाइनरी है उनसे सल्फर के ऑक्साइड उसमें से निकलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ही नहीं बल्कि कुछ और उद्योग भी हैं जो कि बहुत सारी गैसेस को, दुर्गंधित गैसों को वातावरण में प्रसारित कर देते हैं, जैसे चीनी मिल हो गई या जो टेनरी वाला है, चमड़े का जो चर्म शोधक कारखाने हैं, उनसे भी बहुत भयंकर दुर्गंध निकलती है। और खास तौर से अगर हम शहरी वातावरण की बात करें तो शहर में ये अधिक बहुत सारे प्रदूषक और हैवी मेटल्स भी आम तौर से मिलते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह लगे हैं तो ये सब चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं माइनिंग के, इसमें तो माइनिंग में क्या होता है कि इस क्षेत्र में हवा जो प्रदूषक है वो मुख्यतः जो कण होते हैं, क्योंकि हम तो ये हवा में तैरने वाले कण होते हैं जो कि मुख्य प्रदूषक है। और ये कूटने वाली पर जो पत्थर कूटने वाली खान है या आयरन के मुख्य रूप से इन कॉइल या आयरन की खान में ज्यादा होते हैं। और एक तो धूल निकल रही है और दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इसमें से निकलते हैं। अगर हम एस्बेस्टस खाद की खदान में खुदाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में एस्बेस्टस गैस निकलती है, एस्बेस्टस डस्ट की जो धूल है वो निकल रही है जिसके कारण एस्बेस्टोसिस होता है। और उसी तरह से अगर सिलिका की खदान है तो वो भी उसमें से जो डस्ट निकल रही है उससे सिलिकोसिस होता है। तो लेड हो गया, जिंक हो गया और भी दूसरे जो हैवी मेटल हैं जैसे क्रोमियम है, आर्सेनिक है, कॉपर है, मैगनीज है, रिडॉन है, इनमें भी जो खदानें हैं उनमें उच्च घनत्व के कारण एकत्र हो जाती है। और कई बार जैसे रेडिएशंस भी निकलते हैं, अल्फा और गामा रेडिएशंस भी निकलते हैं यूरेनियम की खानों से, और यूरेनियम अयस्क की टेलिंग के आसपास के कारण भी जो वातावरण है वो भी खराब हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण की बात करें तो हवा में तैरने वाले कणीय पदार्थ सबसे बड़े प्रदूषक होते हैं। ये मनुष्य की विभिन्न गतिविधि जो भी हमारी एक्टिविटी है उनके हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया, उद्योगों का धुआं हो गया, डीजल गाड़ियों का धुआं हो गया, रेल इंजन की जो गैस निकलती है जिनपर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसके साथ ही आयरन, जिंक, मैग्नीज के कण भी हवा में मिलते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की खनन, कृषि की, उद्योग और शहरी क्षेत्र में किस तरह से वायु प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और है जो है कैंसर। कैंसरजन्य यानी कार्सिनोजन जो है वो पर्यावरणीय पदार्थ है, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। बेसिकली कैंसर क्या होता है, जो शरीर की कोशिकाओं में होने वाला कोशिकाओं से रिलेटेड जो रोग है वो कैंसर होता है। सामान्य रूप से कहें तो शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए बेकार जो हमारी इंजर्ड जो सेल्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या होता है, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो विघटित हो जाती है। इससे एक कोशिका के मालूम है कि डिसेल डिवीजन होता है, उससे एक कोशिका अनेक कोशिका उत्पन्न करती है। तो कोशिकाओं का निरंतर विभाजन और वृद्धि क्या करती है, मानव शरीर को स्वस्थ और आमा रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ना ये आवश्यकता नहीं भी, जरूरत नहीं है तब भी ये सेल्स विभाजित होती रहती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है सेल की, कोशिकाओं की, उससे क्या होता है कि एक ट्यूमर एक समूह बना लेती है सेल्स मिलकर, जिसे कि हम ट्यूमर कहते हैं। ये जो ट्यूमर है ये या तो गर्म यानी बेनाइन हो सकते हैं या फिर ये मैलिग्नेंट हो सकते हैं, और आमतौर से इनको सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोबारा जब निकाल दिया तो दोबारा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे मैलिग्नेंट जैसे, जो कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो तो एक बार निकाल दिया तो वो दूसरे अंग में नहीं फैलेंगे और वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो क्या होता है कि वो एक बार निकालने के बाद भी वो दोबारा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सिर्फ आने वाले हमारी विभाजित होती रहती है। इन ट्यूमर्स की जो सेल है वो एबनॉर्मल होती हैं और ये बिना किसी नियंत्रण के पहले एक बार डिवाइड होगी फिर दोबारा रीडिवाइड, ऐसे साइकिल चलता रहता है। इससे क्या होता है, ये आसपास के जो अंग हैं और हमारे जो ऊतक हैं उन पर भी अपना प्रभाव डालती है। और इस ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं वो विभक्त होकर या तो ब्लड की रक्त की धारा से या लसिका संबंधी तंत्र में पहुंच जाती है और फिर वो दूसरे जगह एक नया ट्यूमर बनाने लगती है। तो जो ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा कैंसर है वो ब्लड सेल बनाने वाली सेल से प्रारंभ होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो कैंसर का नॉमनक्लेचर है यानी कैंसर का जो नामकरण करते हैं वो जिस अंग को प्रभावित करता है उसी आधार पर हम उसका नाम रख देते हैं। अगर वो फेफड़ों में है तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, अगर वो त्वचा में है तो कैंसर को हम उसको मेलानोमा के नाम से जानते हैं, और जो कैंसर उत्पन्न करने वाले एजेंट हैं उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, और इन एजेंटों का जो वातावरण में उत्पन्न होते हैं इसीलिए इनको हम इन्वायरमेंटल कार्सिनोजन यानी पर्यावरणीय कार्सिनोजन कहते हैं। एक कैंसर उत्पन्न करने का एक विशेष एक कारण जो होता है वो होता है तंबाकू। जैसे तंबाकू लोग खाते हैं पीते हैं या तंबाकू के धुएं में अगर हम निरंतर संपर्क में भी रहें तब भी हमें कैंसर हो सकता है, और इसका जो कैंसर का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है 85% जो डेथ है वो इसी से होती है, तंबाकू खाने या पीने से या फिर उसके धुएं के निरंतर संपर्क में आने से। तो बीड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है कि ना हमारे पेट में यकृत में प्रोस्टेट है कोलन है या मल द्वार का जो कैंसर है उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और बिना धुएं का वाले तंबाकू का प्रयोग जैसे लोग चबाते हैं या सूंघते हैं तो ये क्या होता है इससे ना मुंह में रख रहे हैं या चबा के रख रहे हैं तो उससे क्या होता है गले और मुंह के कैंसर के कारण चांसेस बन जाते हैं होने के। और जो हम तो नहीं पी रहे हैं लेकिन जो पी रहे हैं वो तो तंबाकू के धुएं के वातावरण में रहते हैं तो वो तो एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी पीते हैं अगर वो उनके संपर्क में है तो उसको भी फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि वो जो धुआं है वो डायरेक्टली हमारे नाक में से हमारे फेफड़ों में जा रहा है। और अगर हम स्मोकिंग को या तंबाकू को छोड़ देते हैं तो जो कैंसर होने का खतरा है वो भी कम हो जाता है, और अगर हम छोड़ देते हैं ना धीरे धीरे खतरा भी कम घटता जाता है। अब हम बात करते हैं यूवी रेडिएशन से भी हमें दिक्कत होती है, अगर क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या है वो वातावरण में है सूर्य से ये विकिरण है वो सूर्य से आते हैं और जिससे क्या होता है कि हमारी त्वचा को हानि होती है और समय पूर्व एजिंग का भी हो सकता है। तो यूवी विकिरण के सामने अधिक देर तक अनावृत होने से अगर हम उसके एक्सपोज करेंगे तो हमें कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और ये क्यों ये रेडिएशन डायरेक्टली क्यों आ रहे हैं क्योंकि जो ओजोन लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है वो उसमें छेद हो गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे यौगिकीकरण, इसके कारण जो ये जो रेडिएशन है यूवी रेडिएशन डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं। तो और ये क्या होता है कि जो यूवी रेडिएशन जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, एक वो शील्ड का काम करती है लेकिन वो कहीं कहीं से पतली हो गई है उसमें छिद्र हो गया तो ये डायरेक्टली उसमें आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि दिन की जो 10 बजे की से 3 बजे की धूप है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए क्योंकि उससे स्किन कैंसर होने का चांस होता है, और उसमें आए भी नहीं और अपनी स्किन को भी एक्सपोज ना करें ज्यादा। तो इससे बचने के लिए हो सकता है कि आप चौड़ी किनारे मतलब अपने मुंह और फेस वगैरह को ढक के कर रहे हैं, आंखों में आप यूवी रेडिएशन रोकने वाले गॉगल का इस्तेमाल करें और अपने हाथ पैरों को पूरे कपड़े पहनने से भी हमारे जो शरीर है उसकी रक्षा यूवी विकिरण से हो सकती है। अब हम बात करते हैं आयनाइजिंग विकिरण की, क्योंकि ये जो उच्च स्तर का विकिरण है जैसे कि एक्सरे हो गया हमारा जो रेडिएशन ट्रीटमेंट हम लेते हैं थेरेपीज लेते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो क्या करते हैं हमारी जो सोमेटिक यानी कायिक कोशिकाएं हैं उनको हानि पहुंचाते हैं और इसके कारण भी ल्यूकेमिया या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, काफी सारा थायराइड हो सकता है फेफड़े या पेट या और भी किसी अंग के कैंसर का संभावना हो जाती है। जैसे एक जब जापान में एटम बम फेंक गया उनसे जो लोग बचे थे तो उनसे पता चलता है कि उनमें उस आयनाइजिंग विकिरण से ल्यूकेमिया और दूसरे तरह के कैंसर का खतरा बढ़ा था, और जहां तक संभव हो तो हमें आयनाइजिंग विकिरण द्वारा जो रोग हैं उनको पहचानना और उपचार करना कम से कम करें। और इस प्रक्रिया जब भी उसी अंग में अगर आवश्यकता ही है करना ही पड़ता है तो बाकी अंगों को ढक कर सिर्फ जिस जो अफेक्टेड पोर्शन है उसी पर उसका प्रयोग करें, मतलब बाकी को ढक के सिर्फ उतने ही में आप उस पर ट्रीटमेंट लें। अब हम बात करते हैं कि रसायन और जो दूसरे तत्व हैं वो कैसे, जैसे पेस्टिसाइड की हम बात करते हैं तो खेतों में जो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं खासतौर से हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारे को कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, जैसे 2,4-D जो कि हर्बिसाइड है उससे होने वाला जो एक कैंसर है वो उसकी संभावना स्वीडन में एक जो NHL स्वीडन में यानी नॉन हॉस्किन लिम्फोमा की संभावना 200 से 800% बढ़ गई थी। टॉक्सोफेन हो गया, हेक्साक्लोरोसाइक्लो एक्सिन यानी BHC हो गया, ट्राइक्लोरोफिनॉल हो गया, डेलरिन हो गया, DDT जैसे जो कीटनाशक हैं जो कि उससे देखते हैं कि ना जो हमारे रोडेंट्स हैं यानी चूहे हैं उन पे भी लिम्फोटिक कैंसर हो जाता है। तो वातावरण में ये इन कीटनाशकों का जो अंश कंटिन्यूस है उससे भी पाया जाता है, उससे भी खतरा बना रहता है। और जो कीटनाशकों के संपर्क में हमारा क्योंकि हम संपर्क में आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं इसीलिए कई सारे कीटनाशकों को प्रतिबंधित भी कर दिया गया या उनका प्रयोग बहुत सीमित कर दिया है। और आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी वैकल्पिक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये विधियां भी पर्यावरण मित्रवत विधि है। और जैसे कि बात जानते हैं कि एस्बेस्टस हो गया, निकेल हो गया, कैडमियम हो गया, रेडॉन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, बेंजीडाइन हो गया और जो बेंजीन है वो जाने माने कैंसर कार्सिनोजेंस हैं। और इनके संपर्क में आने उससे और इनको इनका प्रयोग भी कम अगर करें, कम संपर्क में आए और तो हम तरह तरह के कैंसर से बच सकते हैं। अब एक और हमारे जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होती है वो एलर्जी, एलर्जन और एलर्जी। तो एलर्जन क्या है, जो वातावरण में उपस्थित ऐसे तत्व हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है उन्हें हम एलर्जन कहते हैं। और एलर्जन के कारण होता क्या कि जो शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक रोधन उत्तेजना है उस पैदा हो जाती है जो एक प्रतिक्रिया का रूप ले लेती है जिससे अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उसकी क्या होता है रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है जिससे एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनती है जो कि उस आक्रमणकारी जो तत्व जिससे हमें एलर्जी है उससे लड़ सकता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं उनमें एक तरह का केमिकल उत्सर्जित होता है जिसमें हिस्टामिन होता है उसके साथ ही मिलकर ये एलर्जिक प्रतिक्रिया के लक्षण को पैदा कर देता है। और इसके सबसे सामान्य लक्षणों की अगर बात करें एलर्जी की वजह से छींक आती है, नाक बहती है, आंखों और कानों में खुजली सी पैदा होने लगती है, सांस में तेज घरघराहट हो सकती है, खांसी हो सकती है, सांस फूलना हो सकता है, साइनस की समस्या हो सकती है, गले में सूजन हो सकती है, बिच्छू मोटी जैसे खुजले दाने भी हो जाते हैं और कई बार ना एक्जिमा, अस्थमा और सिरदर्द भी है वो भी एलर्जी की दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे अधिक एलर्जी फैलाने वाले कारण जो है एलर्जन है, जैसे कि कुछ पेशेज पौधे होते हैं या परागकण हो सकते हैं, जो ये धूल होती है निर्माण जब हम कर रहे होते हैं निर्माण के सामान से हो सकता है, किसी किसी को एनिमल से हो सकता है जैसे कुत्ते बिल्ली से एलर्जी हो सकती है, ततैया या मधुमक्खी जैसे कीड़े हों, कई बार इंडस्ट्रियल और जो घरेलू हमारे केमिकल्स हैं, कुछ मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है और किसी किसी को कुछ खाद्य पदार्थ भी सूट नहीं करते जैसे किसी को दूध और अंडे से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जन में प्रोटीन होता है जो हमारे खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन कुछ एलर्जन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन नहीं होता है, जैसे कि उनमें हम किसी मेडिसिन का नाम ले लें तो पेनिसिलिन, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस एलर्जन को पहचानें जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है और कोई अगर आप पता लग जाए कि क्या है तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू बेबी रोग का जो कि बच्चों में होता है। और ये कैसे होता है, क्योंकि ना हम जब मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का उपयोग करते हैं और जो नाइट्रेट होता है वो पानी में घुलनशील होता है। और आज हालत ये है कि कहीं कहीं जगह पर हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसमें नाइट्रेट का स्तर बढ़ गया है और ये जो नाइट्रेट है वो मिट्टी में घुल जाता है। जब भूमि में और जल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है जो तो वो हानिकारक होता है और ये उन जगह पर हो सकता है जहां पर कि हम केवल अंडरग्राउंड वाटर का ही उपयोग अपने पेयजल के रूप में करते हैं और इसी कारण ये जो मेथाइमोग्लोमेनिया नामक जो रोग है उसकी संभावना हमारे इन्फेंट यानी जो दूध पीते शिशु होते हैं उनमें होती है, क्योंकि वो इस अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। क्योंकि हमें बताया कि ना बच्चे को बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विड देते हैं, लिक्विड जैसे पानी पीते हैं, जैसे जूस हो गया या कुछ इनके जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको हम पानी में घोल कर देते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा है। जब इस पानी को हम जो नाइट्रोजन युक्त पानी है, नाइट्रेट युक्त पानी है, उसी को हम उपयोग में ला रहे हैं, तो ये आंत में पहुंचता है, तो जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, और नाइट्राइट जो आयन है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं तो मेथाइमोग्लोबिन बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त को जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, बाधा हो जाती है, जिसके कारण रक्त की कमी होती है, और इसीलिए हम उसे मेथाइमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। और इसके कारण जो मिथेनोग्लोबिन बनता है, जब हीमोग्लोबिन बन जाता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर फेरस से फेरिक रूप में बन जाता है, तो उस कारण क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन कमी होने से बच्चे का जो शरीर है वो धीरे धीरे नीले रंग का होने लगता है, नीलापन देने लगता है, इसीलिए इस रोग को हम कहते हैं ब्लू बेबी डिजीज। और इसके जो लक्षण क्या है कि बच्चा अधिक सोता है, दूध कम पीता है, बिल्कुल लेथार्जिक लगेगा, ऊर्जा की कमी दिखेगी, कमजोर लगेगा, तो ये उसके लक्षण है। तो पानी से जो नाइट्रेट है उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस और विपरीत परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटा सकते हैं, और पानी के नाइट्रेट को नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करने के लिए पानी में एक तीव्र ऑक्सीकारक जैसे ओजोन को मिलाना पड़ता है, ताकि उसकी वो तीव्रता है उसे कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं अस्थमा की। तो ये जो श्वसन नलिकाओं की एक लंबी चलने वाली क्रोनिक बीमारी है, इसमें क्या होता है, हवा का प्रभाव बाधित होता है, मांसपेशियां जो वायु मार्ग के पास जो कोमल मांसपेशियां हैं वो सख्त हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, और विभिन्न प्रकार के जो उत्तेजक हैं उनके संपर्क में आने से कफ भी बन जाता है, और अस्थमा का कोई इलाज नहीं होता है, बस इसको नियंत्रित करने और उसकी क्रूरता रोकने के लिए उपलब्ध है, और ये बहुत प्राण घातक रोग है। इसमें क्या होता है इमरजेंसी इसमें जो ब्रंकियल जो हमारी ट्यूब्स हैं वो टूट जाती हैं, तो पता नहीं चलता है तो इसके क्या संभावित लक्षण हो सकते हैं, और बचपन में इसके संभावना ज्यादा होती है। एलर्जी और एलर्जी से उत्पन्न समस्याओं का कोई पारिवारिक हिस्ट्री हो सकती है, वायुजनित एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में ना आना, जैसे पालतू पशु हैं, घरेलू बारीक जो धूल है, डस्ट वगैरह से बचने का, निर्माण सामग्री से बचने का, और ये शुरू के फर्स्ट फाइव ईयर में जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनमें ये संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से भी होता है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सांस संबंधी संक्रमण का बार बार होना, सांस फूलना, घरघराहट होना, छाती में या छाती के पास की मांसपेशियों में अकड़न या दर्द होना, कुछ हफ्तों तक निरंतर खांसी चलती है, ये भी अस्थमा के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं हैवी मेटल विषाक्तता यानी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी और उसका रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं। हवा में विषाक्त धातुएं धातु निकालने वाले उद्योगों से जैविक कचरा जलाने से ऑटोमोबाइल और कोयले पर आधारित ऊर्जा बनाने वाले उद्योगों के कारण फैल जाती है। ये जो भारी धातुएं हैं वायु में मिलकर वायु के साथ अपने जो स्रोत हैं उनसे बहुत दूर तक फैल जाते हैं, क्योंकि हवा के थ्रू फैल रहे हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये गैस रूप में भी हो सकते हैं या फिर बारीक कण के रूप में भी हो सकते हैं। तो वर्षा होने से ये धातु प्रदूषक हवा से निकलकर धरती पर और जल निकाय में पहुंच जाते हैं। इन भारी धातुओं के कारण जो है हमारे जो पब्लिक हेल्थ है जन स्वास्थ्य पर प्रभाव तब पड़ता है जब ये किसी फूड चेन से जुड़ जाते हैं। तो हैवी मेटल का जो है बायोडिग्रेडेशन उसको खत्म करना उससे संभव नहीं है, जैसे जो मछली है, ऑयस्टर है, मैसल्स हैं, या फिर तलछट या अन्य जलीय जो जीव पारितंत्र के घटकों में ये भारी धातुओं के एकत्रित होने से हम काफी बार रिपोर्ट देखते हैं इस तरह की आती है। और ये हैवी मेटल कौन कौन से हैं, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, ये जो है अक्सर हैवी मेटल वातावरण में पाई जाती है और इसके कारण जीवाणुओं की विषाक्तता पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लेड की बात करते हैं, हैवी मेटल ये है, तो गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उस से ही ये वातावरण उसमें लेड होता है और जो वातावरण में फैलता है। और टेट्राएथाइल लेड को क्यों मिलाते हैं गाड़ियों के में, पेट्रोल जो है उसमें मिलाया जाता है ताकि गाड़ियों के इंजन को सुगमता से चलाया जा सके, जो कि एक एंटी लॉक के रूप में काम करता है। तेल को एंटी लॉक के लिए अन्य मिश्रण के द्वारा बदला जाता है जिससे गाड़ियों में लेड का उत्सर्जन कम हो जाता है। पेट्रोल में से लेड को हटाकर हम क्या करते हैं, लेड मुक्त पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो प्रदूषण है वो थोड़ा कम होगा। जो वायु में लेड की मात्रा कम उत्सर्जित होगी, जैसे बैटरी की छीलन है उसमें भी लेड पाया जाता है। और जब ये लेड पानी या खाने के साथ मिल जाता है तो इसका जो टॉक्सिसिटी है वो काफी बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, ठीक ना जो होने वाले व्यवहारिक रोग होते हैं, स्नायु तंत्र की क्षति होती है और छोटे बच्चे होते हैं और जो शिशु होते हैं उनमें कई सारे विकास की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण गुर्दों और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मरकरी की। तो जापान में 1960 में पारा दृश्य की घटनाएं हुई, मिनामाटा रोग था जो देखने को मिला। क्या था कि जो मिनामाटा खाड़ी है उसमें जो मछलियां थी वो मछलियां का जो खाते थे, तो क्या था कि जो मिथाइल जो मछलियां हैं जिस पानी में थी उसमें ये मिथाइल मरकरी को छोड़ा जाता था किसी जो इंडस्ट्री लगी हुई थी तो, और मछलियां उसी जल में थी तो जब वो मछलियां इंसानों ने ली तो क्या हुआ कि इंसानों ने जब उसका कंज्यूम किया तो ये देखा गया कि जो ये मिनामाटा डिजीज है वो पारा प्रदूषण का है और इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है जलीय जीवी। और ये जो था कि ना जब मछलियों के शरीर में ये पारा अंदर गया तो वो उनकी जो सेल्स हैं वो मर गई और उससे क्या हुआ कि उसके संपर्क में आने वाले जो अंग हैं वो भी मरकरी के संपर्क में जब आए तो वो भी क्षतिग्रस्त हो गए और उनकी जो एक्टिविटी है वो भी बाधित हो गई। तो क्योंकि जो पारे की भाप है वो अगर सांस के साथ आती तो और भी खतरनाक हो जाती है और पारे इसका लंबे समय तक संपर्क में आएगा तो मुंह और त्वचा में घाव हो सकते हैं और हमारे स्नायु तंत्र की समस्याएं हमारी उत्पन्न हो सकती हैं। जो लेड मरकरी पॉइजनिंग है उसके लक्षण क्या है, चिड़चिड़ापन हो गया, उत्तेजना हो गया, स्मरण शक्ति की कमी हो गई, अनिद्रा हो गई, कपकपी और मसूड़ों में सूजन हो गई। जो इसके संपर्क में बचाव का क्या है? जरूरी है कि ये हम ध्यान रखें कि जो पारा है वो वातावरण में इमिट ना हो जाए, उसका निष्कासन ना हो ज्यादा और साथ ही साथ उस स्थान पर हम आजकल ये कर रहे हैं कि हम पारे के जो थर्मामीटर हम इस्तेमाल करते थे मरकरी थर्मामीटर है, अब हम मरकरी फ्री थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं। एक और है आर्सेनिक, जिससे उसका संबंध विशेषतः जो है तांबा लोहा और चांदी के अयस्कों से होता है और ये जीवा जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तभी ये निष्कासित होता है। और उर्वरक संयंत्रों से निकले जल तरल पदार्थ में भी आर्सेनिक मिलता है। और ये क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनके आसपास के क्षेत्र में अगर भूमि का जल भी रहता है तो अगर उसमें आर्सेनिक मिल जाए तो वो भी क्या होता है, वो भी संदूषित हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाएगा। और जो लोग इस पर निर्भर करते हैं तो वो एक प्रदूषक के डायरेक्टली संपर्क में आ जाते हैं। तो इसके वजह से अगर संपर्क आता है कोई, अगर इसका मिश्रित जल अगर इस्तेमाल कर रहा है भूमिगत जल जिसमें आर्सेनिक की मात्रा जो मेजरमेंट है उससे ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि ना वहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं जो सब जल का उपयोग कर रहे हैं उनको भूख की कमी हो सकती है, उनके वजन में कमी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग हो सकते हैं क्योंकि वो उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कहीं हम रिसर्च करते हैं या हम कहीं इसकी जांच कराते हैं और उसमें अगर ये मिलता है कि इस स्रोत में या इस जगह पर पानी पीने और भोजन के आर्सेनिक मुक्त नहीं है तो उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए पीने के और खाने के। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं हम इस तरह से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उसका एक उदाहरण है आपका 2004 में एक स्टडी की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, वो वहाँ का जो पेशेंट था वो एम्स में आया था दिल्ली इलाज के लिए, क्योंकि वो जब आया था तो उस उसकी 1996 में कोई चोट लगी थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, उसकी उंगलियों में अल्सर हो रहा था, लेकिन बाद में उसको इलाज नहीं हो पा रहा था तो उसको काटना पड़ा। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक से संक्रमित जल को लगभग 10 साल तक पीता है तो उसके क्या होता है, छाती के ऊपर के हिस्से में, कमर में और हाथ में काले धब्बे भी विकसित हो जाते हैं, जिसे हम मेलानोसिस कहते हैं। और इसके बाद केराटोसिस अगली होती है, जबकि जो हथेलियां हैं वो सख्त हो जाती हैं और रोगी को डायरिया, पेट दर्द और सांस की तकलीफ होती है और काले काले धब्बे के साथ सफेद धब्बे हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, चलने में तकलीफ होती है और कुछ जख्म से खून भी बहने लगता है, साथ साथ हमारा लिवर और किडनी भी डैमेज होते हैं। कैडमियम खनन जो है ना, विशेषकर जिंक धातु प्रक्रियाओं द्वारा मेटलर्जिकल जितनी प्रोसेस हैं, जो कलई इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कलई करने वाले उद्योग के कारण जो एक्टिविटीज होती है उसके कारण कैडमियम इमिट होता है, निकलता है। और ये करते हैं मानव शरीर से में ये सांस के साथ जलीय स्रोत में भी पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लिवर सिरोसिस हो सकता है, हड्डियों की कमजोरी है और गुर्दों की तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है और इटाई इटाई रोग भी इसी से होता है, जो कि सर्वप्रथम देखा गया था जापान में। और इसका कारण था कि पानी और चावल का कैडमियम से संदूषित हुआ था और संदूषण का कारण था नदी में जिंक स्मेल्टर के कूड़ा मिलना था। अधिकतर लोग अपने दिन का अधिकतर समय अपने कार्यस्थल में ही व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कृषि कुटीर उद्योग प्रक्रियाएं जैसे खेत में और घर में चलते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में कार्य अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक उपलब्धि प्रदान करता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो वर्क प्लेस है वो स्वास्थ्य के लिए बाधा बन जाता है। कार्य के कारण चोट, श्वसन संबंधी रोग, कैंसर, प्रजनन विकार हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटन विकार हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकते हैं, मानसिक और स्नायु तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, श्रवण विकार हो सकता है आदि जैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्वास्थ्य बाधाओं को व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य बाधा भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी बाधाएं जो है हमारी हेल्थ ऑक्यूपेशन से यानी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे हम कुछ भारी काम कर रहे हैं यानी शारीरिक श्रम करते हैं, तो जैसे मजदूर हो गए, लकड़हारे हो गए, निर्माण करने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं, जो भंडारण मजदूर हैं या चिकित्सालय में जो कर्मी हैं, वो क्या करते हैं, बार बार एक ही काम करने से और निरंतर मांसपेशियों पर भार पड़ने से क्या चोट लग जाती है या मांसपेशी संबंधी। तो इसके कारण क्या है कि अल्पावधि के लिए या दीर्घकालीन के लिए उनमें जो कार्य करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, अक्षमता भी अक्षम भी हो जाते हैं और ये अक्षमता का इवन ना परमानेंट भी हो सकती है। तो अनावृत और असुरक्षित मशीनें हो गई, असुरक्षित ढांचा हो गया, खतरनाक औजार जो है कार्यस्थल के मुख्य और सामान्य बाधाएं हैं। अब ब्लैक लंग डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये है कि जो कोयले की खान में जब लोग काम करते हैं तो कोयले की धूल होती है वो मुख्य वायु प्रदूषक भी है, जिससे क्योंकि खनिज जो है उसके अंदर काम कर रहा है, कोयला निकाल रहा है खदान में से, तो हर दिन उसके संपर्क में रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कोयले की धूल जो है उनके खनिकों के जो उसमें काम कर रहे हैं उनके जो गुलाबी फेफड़े होते हैं वो काले दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो जो कोयले की धूल है उससे वो ढक जाते हैं। इसीलिए जो ये रोग होता है इसका नाम हमने दिया हुआ है कृष्ण फुफ्फुस रोग, यदि न्यूमोकोइनोसिस प्रचलित है इसे एंथ्रोकोसिस भी कहते हैं। और जो फेफड़ों की बीमारी जो है ना खान में काम करने वाले पुराने मजदूरों को होती है, जो वर्षों से सालों साल कोयले की धूल से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे होते हैं। उस शहर में जो रहने वाले लोग हैं जहाँ पर ये कोयले की खदानें हैं वो उनके भी फेफड़ों पर इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि वो शहर थोड़े दूर में है तो उन पर उतना कम होता है, लेकिन जो कोयले के खान में काम करने वाले श्रमिक हैं उनमें ये मात्रा ज्यादा होती है। ये क्या होता है, कोयले के जो कण है वो फेफड़ों में जम जाते हैं, ये फेफड़ों में नष्ट नहीं होते हैं ना ही हट सकते हैं, तो ये वहीं जमे रहते हैं। इससे क्या होता है कि ना फेफड़ों पर चोट लग अगर कुछ काल जम जाती है और चोट लगने से ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करने की जो प्रापण क्षमता है वो कम हो जाती है। और क्या होता है, लक्षण ये है कि सांस लेने की क्षमता घटती है, बीमारी बढ़ने की जरूरत ही बढ़ जाती है, कई बार हार्ट फेल भी हो सकता है। और कुछ बीमारियों की घटनाओं में निरंतर बढ़ने के कारण जो करने में जो तंतु है उसमें एक फाइव गांठ है जो उत्पन्न हो जाती है जो कि ऊपरी भाग को क्षति करता है। कुछ रोगों में यानी एम्फिसेमा में जैसे सांस उखाड़ने का रोग हो जाता है, ये भी इसका ही विकृत रूप है। अब हम बात करते हैं, इसका एकमात्र उपाय है कि दीर्घकालीन इस खोले के जहाँ भी है बहुत शोर जो है वो तनाव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि 80 से 90 डेसिबल से ज्यादा का शोर है तो वो आपके कानों के लिए हानि पहुंचाएगा। तो इसके मनोवैज्ञानिक होते हैं यानी शोर से संवेगात्मक जो समस्याएं हैं जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, अनिद्रा हो गई, एकाग्रता की कमी हो सकती है या क्षमता में भी कमी हो सकती है। श्रवण संबंधी रोग में क्या है कि ये जब रोग 85 से 90 डेसिबल से स्तर के होते हैं तो शब्द थकान हो जाती है, यानी मिक्सी या ब्लेंडर का आपने शोर सुना होगा, वो अस्थायी बहरापन भी हो सकता है और बहरापन स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी बहरापन तो या निरंतर शोर के बीच में रहने से, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर की बात करें तो उनका अस्थायी होता है क्योंकि 8 घंटे वो कंटिन्यूस टेलीफोन पर सुन रहे हैं, लेकिन वो आराम करते हैं तो उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 90 डेसिबल से ज्यादा का शोर हम बार बार लंबे समय तक सुने तो हमें स्थायी रूप से बहरापन भी आ सकता है। तो अगर जिन लोगों को कानों में अगर तकलीफ होती है तो उनके लिए स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, इसीलिए उन्हें शोर भरे वातावरण या से थोड़ा दूरी रहें तो अच्छा रहेगा। दूसरे गैसों में शब्द प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे बोलने और वार्तालाप में बाधा होती है, उच्च स्तर का शोर है तो आपको अपनी बात सुनने के लिए बहुत ऊंची आवाज में बात करना पड़ेगा। जैसे कोई ढलाई का कारखाना है उसमें बॉयलर केबिन में अगर बात करें, जैसे सड़क में गलियों में रेहड़ी पर जो सामान बेचने आते हैं वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं अपने सामान देखने ताकि उनकी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन बाद में ये कुछ आवाज़ों के विकास से अग्रसित भी हो जाते हैं क्योंकि उनके वॉइस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। चिड़चिड़ापन भी होता है, बहुत से लोगों को भी जब होती है गुस्सा आता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं तो मनोरोगी शीघ्र ही क्रोधित हो सकते हैं और बहुत ज्यादा चिड़ भी सकते हैं। क्षमता में भी हमारी कार्य क्षमता और कुशलता में भी कमी आती है अगर कार्यस्थल पर ज्यादा शोर हो। शांत वातावरण कुशलता और सतर्कता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। उसी तरह से अगर हम देखें शारीरिक परिवर्तन, जैसे शोर का अगर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, नाड़ी की गति, श्वास की गति, पसीना अधिक आता है, सिर दर्द, चक्कर, मतली, थकान, अनिद्रा जैसे भी हो हमारे शोर के कारण हो सकते हैं। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनको ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव दूसरों से ज्यादा पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ रसायन और जैविक कारक जो होते हैं एजेंट के बारे में, यानी हमें मालूम है कि बहुत से उद्योगों में जो श्रमिक हैं वो अनेक तरह के रसायनों के संपर्क में आते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बाधाजनक हो सकते हैं और कभी कभी कैंसर भी की संभावना हो जाती है। जैसे कपड़ा मिल हो गया, सीमेंट हो गया, निर्माण के उद्योग हैं, ये ऐसे उद्योग हैं, बेंजीन हो गया, क्रोमियम, नाइट्रोमीन और एस्बेस्टस ऐसे तत्व हैं जिनके कारण फेफड़ों का, मूत्राशय, त्वचा का, लीवर का कैंसर हो सकता है। इनकी रोकथाम के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और बचाव आवश्यक है। इसमें श्रमिकों को ऐसे रसायनों से पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहिए जिनके कारण कैंसर होता है। व्यावसायिक अस्थमा, कार्बनिक धूल, सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंद, निर्माण सामग्री और कुछ रसायनों के संपर्क में आते रहने से होता है। और जैसे 1947 में कोलार सोने की खान से सिल्कोसिस के पहले केस आए थे। सिल्कोसिस खदान, पोटरी और सेरेमिक उद्योगों के श्रमिक में जो है वो प्रचलित है। और न्यूमोकोनिस जो है और बाइसिनोसिस जो है माइका कपड़ा मिलों के मजदूरों में सामान्य रूप से पाई जाती है। तो आज हमने बात की कृषि क्षेत्र के प्रमुख वायु प्रदूषकों के बारे में, खदानों विशेष रूप से कोयले की खदान के श्रमिकों को अगर लंबे समय तक वो कोयले की धूल में रह रहे हैं तो उसके कारण उन्हें काला ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है और इसका कोई उपचार नहीं है, अगर सावधानी नहीं है। और कभी कभी शरीर की जो कुछ सेल्स हैं वो बिना आवश्यकता के भी विभाजित होने लगती हैं, ये कैंसर को कैंसर फैलाती हैं और बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और भी बहुत सारे पर्यावरणीय कारक हैं। जो कैंसर का कारण है उन्हें हम कैंसर जन्य कहते थे, तंबाकू का धुआं या तंबाकू रखना, पराबैंगनी किरणे हैं और आयनाइजिंग विकिरण है, और कुछ दवाइयाँ, कितना हो गया, नाम कहना हो गया, पराग जनित बुखार, पर्यावरण में रहने वाले तत्वों के कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम एलर्जन कहते हैं। ये आवश्यक नहीं कि ये अपने आप में हैं, लेकिन कई बार हानि पहुंचा देते हैं। अगर हम पेयजल की बात करते हैं तो पेयजल में उच्च नाइट्रेट की मिलावट से प्रायः दूध शिशुओं को मेथमाइग्लोमीनिया नामक रोग हो जाता है। नाइट्रेट से उत्पन्न जो होता है नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेथाइमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित होता है। अस्थमा एक ऐसा रोग है जिसके कारण श्वसन प्रणाली में हवा का प्रवाह बाधित होता है। यह एक एलर्जी से संबंधित विकार भी हो सकता है, यह प्राणघातक भी होता है। पर्यावरण में बहुत से हैवी मेटल्स, लेड हो गया, पाराद हो गया, आर्सेनिक हो गया और कैडमियम भारी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कैंसर का कारण भी होते हैं और मृत्यु का कारण भी हो सकते हैं। खदानों में, पत्थर की छोटी खानों में या छूट अन्य उद्योगों में श्रमिकों को लंबे समय तक तेज ध्वनि में काम करना पड़ता है और 85 से 90 डेसिबल से उच्च स्तर के शोर में लंबे समय तक रहने से चिड़चिड़ापन होता है, अनिद्रा होती है, उच्च रक्तचाप और स्थायी या अस्थायी बहरेपन की समस्या हो सकती है। तो ये आज हमने बात की पर्यावरण और स्वास्थ्य पर। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी हमने आज आपसे शेयर की है उससे आपको लाभ मिलेगा, आपको आपके लेसन को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।